स्वराज्य अधिकारी बाप दादा के नूरे रतन परमात्म पालना से संपन्न अपने अलौकिक प्रेरणादायी जीवन से सबको मार्गदर्शन देने वाले साकार के हस्तों की विशेष अनुपम रचना आदरणीय भ्राता रमेश भाई जी का हमें सभा में बहुत बहुत दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका लौकिक जन्म भावनगर गुजरात में हुआ और लौकिक पढ़ाई बॉम्बे में हुई। आपने बीकॉम एलएलबी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किया। 1956 में फर्स्ट क्लास फर्स्ट सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने कंप्लीट किया। 1957 से आप सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं। 8 वर्षों तक आपने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर के पद पर अकाउंट्स टैक्सेशन और ऑडिटिंग आदि सब्जेक्ट्स पर आप पढ़ाते रहे हैं। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलोसफीज में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। संस्था के फाइनेंस प्रॉपर्टी और लीगल एडमिनिस्ट्रेशन के निमित्त बाबा ने आपको बनाया है। वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के आप मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के आप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशन सोसाइटी के आप फाउंडर सेक्रेटरी हैं। स्पार्क एंड ज्यूरिस्ट विंग के आप चेयरपर्सन हैं। श्री शिवा आध्यात्मिक फाउंडेशन के आप मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। फिलॉसफी आर्ट लिटरेचर इकोनॉमिक्स आदि विषयों पर आपने 4000 से अधिक पुस्तकें पढ़ी हैं। आप एक एक्सीलेंट ऑथर हैं। आपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। ज्ञानमृत पे हम समय प्रति समय आपके प्रवचन आपके लेख पढ़ते रहते हैं। आपकी एक बहुत सुंदर बुक पवित्र धन के नाम से प्रकाशित है और आपके जो भी लेख हैं वो हमारे बुद्धि के ताले को खोलती रहते हैं। आपका अनमोल जीवन इस ईश्वरीय परिवार के इतिहास का दर्पण है। आपके द्वारा साकार पालना के अनुभवों को सुनकर हम सभी प्यार भरी यादों में खो जाते हैं और अपने मन बुद्धि के पंखों द्वारा उड़कर बाप दादा की गोदी में समा जाते हैं। बाप दादा की प्रेरणाओं से आपने यज्ञ के आदि दिनों में सेवाओं को एक नई दिशा दी। चित्र प्रदर्शनी क्रिएशन का कार्य भी बाप दादा ने आपके द्वारा ही कराया। संस्था के फर्स्ट फॉरेन डेलीगेशन के मेंबर रहने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। आपकी मधुर साकार यादें सुनते ही हमारे मुख से यही शब्द निकलते हैं, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा मम्मा बाबा का साकार प्यार। भाई जी आपके द्वारा हमने पाया बाबा साकार का साक्षात्कार, बाबा साकार का साक्षात्कार। रोम रोम जो यज्ञ चलाते, रोम रोम जो यज्ञ चलाते, ये रमेश जी भाई न्याय व्यवस्था अंकेशन में श्रीमत है शैदाई, श्रीमत है शैदाई। आज उनके मुख द्वारा सुनेंगे आदरणीय रमेश भाई जी।
ओम शांति। मैं हमेशा ही कहता हूँ बहनों को, ये सब बाकी का परिचय तो ठीक है, मुख्य परिचय तो यही है जो आप सबका है, हम सबका है, कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। इनसे बड़ा और कोई और इनसे श्रेष्ठ और कोई परिचय हो ही नहीं सकता। बाकी मुझे कहा गया है कल की मुरली के बारे में उसको रिवीजन कराने का। जैसे गाय होती है घास खा लेती है, फिर ये कान में बैठती है, फिर उसको वागोड़ती रहती है, इस प्रकार से कल की मुरली के बारे में थोड़ी चर्चा करने की। मैंने टाइमिंग नोट किया हुआ है क्योंकि बाबा हम बच्चों को टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है। कल की मुरली के अंदर एक बात देखी कि बाबा बहुत फास्ट स्टेज पर भी गुलजारदारी बैठे 7:28 को बैठे, मेरी घड़ी के मुताबिक है, मेरी घड़ी और यहाँ की घड़ी में 3-4 मिनट का फर्क है। मेरी घड़ी के मुताबिक 7:28 को गुलजारदारी स्टेज पर बैठे, 7:32 को माना 4 मिनट के अंदर ही, 28 के बाद भी गीत बजना शुरू होता है, ये सब में टाइम जाता है, फिर भी मतलब उसमें 2 मिनट गई होगी, तो 2 मिनट में ही बाबा ने गुलजारदारी की रस्सी खींच ली और अपने पास बुला लिया। 7:32 को मतलब वो बाबा के पास पहुंच गए, बाबा की प्रवेश था 7:35 को हुई, और उसके बाद बाबा ने दृष्टि भी दिया और बीच में खांसी आई, तो इसके कारण वो आप देखने सबने देखा होगा वो जो भी कारोबार हुआ। और फिर 7:45 को बाबा ने अव्यक्त मुरली शुरू किया, जो ऑपरेटिंग पार्ट जो है, जो जिसके जिसको हम कहते हैं ये मुरली का पार्ट है, वो मुरली 8:32 को चली, माना 7:45 से 8:32 को, इसी हिसाब से देखा जाए तो कल बाबा की अव्यक्त मुरली एग्जैक्ट 47 मिनट चली। उसके बाद पंजाब जोन का सेवा का टर्न जो मुन्नी बहन ने बताया उसके बारे में बाबा ने कहा 8:32 से 8:43 मतलब 11 मिनट पंजाब जोन के कनेक्शन की बातें कही। फिर 8:43 से बाबा ने डबल फॉरेनर्स के लिए बात किया, वो 10 मिनट किया 8:43 से 8:53 तक। फिर 2 मिनट जो है बाबा ने कलकत्ते से जो फूल आदि लेके आए थे श्रृंगार करने के लिए सारा स्टेज आदि का, उनको 2 मिनट, और बाद में 1 मिनट जो है बाबा ने जो कहा कि आज तो सबसे मिले ना, देखो एक एक से अलग सामने तो मिल नहीं सकते, लेकिन एक एक को दूर बैठे भी साथ में अनुभव करते याद प्यार दे रहे हैं, इस प्रकार से वो 1 मिनट गया। तो इस प्रकार से 8:56 तक मुरली का कारोबार चला, और उसके बाद स्टेज के ऊपर कारोबार चला जिसमें दादी जानकी को फूल हार का चढ़ाया आदि आदि, और बाबा ने बराबर 9:30 विदाई लिया। मानो करीब बाबा टाइम मैनेजमेंट सिखाते कि 2 घंटे के अंदर चाहे कितने भी बहन भाई सामने हो उसके बीच में भी 2 घंटे के अंदर कारोबार कैसे कर सकते हैं। जो बाबा कहते हैं ना कम बोलो मीठा बोलो, इस प्रकार से कम बोलो, कम समय में आकर के कम समय में बात कर करके जो कहना है वो करके दिखाते हैं। तो ये बात बाबा की जो है वो है, बहुत सुंदर बातें कल बाबा ने कही है। आप लोगों ने एक नोट किया होगा, कल बाबा और ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त बाबा और अवलौकिक बाबा, इन दोनों के पार्ट की अंदर की विभिन्नता क्या थी, दोनों के पार्ट कैसे अलग अलग होते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हम दूसरी बातों के विचार कर ले। कल आप सब जानते हैं कल अव्यक्त मुरली तो रात को ही, परंतु उसके पहले सुबह जो है हम ब्रह्मा बाबा की साकार मुरली के कई एक्सट्रैक्ट जो है वो निकाल करके और उसकी एक मुरली बना करके सुनाते हैं। आपने भी कल की मुरली सुनी होगी, 3-4 साल पहले की एक मुरली जो है साकार बाबा की, वो मुझे हमेशा ही याद रहती है, वो मैं आपको वो याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा ने उसमें बहुत अच्छी एक बात कही थी जो सबके काम की है। पर हमने देखा है कि हम लोग जो है ना क्या करते हैं, मैं हमेशा ही बाबा को कहता हूँ बाबा क्या, बाबा आपने एक गलती किया है, हमको 2 कान दिए हैं, तो वास्तव में 2 कान से क्या होता है, 1 कान से जो ज्ञान जाता है ना और 2 कान से निकल जाता है, वास्तव में 2 कान से डबल कान ज्ञान अंदर जाना चाहिए, डबल फोर्स से अंदर जाना चाहिए, इसके बदले में 1 कान से जो जाता है और 2 कान से निकल जाता है। क्योंकि 4 साल पहले की साकार मुरली जो 18 जनवरी के लिए ऊपर पड़ी गई थी, हम लोग ऊपर जाते हैं पांडव भवन में, ओम शांति भवन में, यूनिवर्सल पीस हॉल में वो मुरली सुनते, उसमें बहुत अच्छी एक बात कही थी, वो सबके लिए किया, क्योंकि हम सबको बाबा ने यही कहा है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प समान जीवन व्यतीत करने का है। उसके अंदर बाबा ने बहुत एक अच्छी बात कही थी जो सबके लिए, मैं रिपीट इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी उस बात की जो बाबा ने डायरेक्शन दिया है उसका पालन बहुत कम बहन भाइयों ने किया हुआ है। बाबा ने एक बात कही थी उसके अंदर, आप सब ध्यान से बाबा की वो बात सुनना। बाबा ने साकार मुरली में कहा था कि जिन बच्चों के पास चाहे बहन है चाहे भाई है, जिन बच्चों के पास वर्तमान जीवन ये जो अपना अभी जो जीवन व्यतीत हम कर रहे हैं, ये वर्तमान जीवन को अपना और अपने परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त धन हो, वर्तमान जीवन अपना और अपने परिवार के चलाने के लिए पर्याप्त धन हो, तो बच्चों को उस भविष्य की कमाई के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। भविष्य की माना जो 21 जन्मों की कमाई जो है उसके प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। मुझे याद है हमने एक बार अव्यक्त बाबा से बात किया था, हमने कलकत्ता से गाड़ी बुक कराई थी और कलकत्ते से दिल्ली होकर के आबू होकर के बॉम्बे जाना था, तो हमने बाबा से पूछा था कि बाबा मैं सबको क्या संदेश दूं, क्योंकि सब रास्ते में सब कलकत्ते से दिल्ली और दिल्ली से आबू और आबू से बॉम्बे जाने के बीच में रास्ते में अनेक सेवा केंद्र आएंगे। तो बाबा ने उनको कहा था कि बच्चे आप गृहस्थ व्यवहार में रहते हो तो सभी मेरे गृहस्थी बच्चों को कहना कि मैंने जो आदर्श गृहस्थी कही थी उसका आप पालन करते हो। मैंने कहा बाबा आप बताओ क्या आदर्श गृहस्थी किसको कहते हैं, तो बाबा ने कहा कि 24 घंटा जो होता है वो तो सबके लिए 24 घंटा है, ऐसा नहीं है किसी को 25 घंटा होगा और किसी को 20 घंटा होगा, ऐसा नहीं होता है। 24 घंटा जो है उसका तीन हिस्से में विभाजन करने के लिए बाबा ने कहा था, 8 घंटा जो है शरीर के आराम के लिए खाना पीना स्नान आदि करने के लिए 8 घंटा, 8 घंटा लौकिक कमाई के लिए जिसके आधार पर लौकिक कमाई हो घर बार चले परिवार चले, और 8 घंटा ईश्वरीय सेवा के आधार पर भविष्य की कमाई के लिए देना चाहिए। तो मैंने बाबा को कहा था कि बाबा ये पॉसिबल नहीं है, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 8 घंटे के लौकिक जीवन के चलाने के पुरुषार्थ से लौकिक जीवन की कमाई जो होनी चाहिए हर मास का खर्च निकलना चाहिए वो नहीं होता है, इसलिए 8 घंटे के बदले में ज्यादा समय देना पड़ता है। उस पर बाबा ने मुझे कहा था बहुत अच्छी बात कही कि एक जन्म की कमाई जो है ना उसके लिए भी 8 घंटा कम पड़ता है, एक जन्म की कमाई के लिए भी 8 घंटा कम पड़ता है, तो 21 जन्मों की कमाई के लिए कितने घंटे चाहिए वो हिसाब लगाइए। आप सब यहाँ बैठे हुए सबको ये तो हिसाब आता ही होगा, एक जन्म की कमाई के लिए 8 घंटा कम पड़ता है, महंगाई इतनी बढ़ गई, तो बाबा ने कहा 21 जन्मों की कमाई के लिए कितना घंटा देना चाहिए, घाटा कहाँ करते हैं, एक जन्म की कमाई के ऊपर कम समय नहीं देते, पूरा ही समय क्या ज्यादा समय देते हैं, परंतु 21 जन्मों की कमाई के लिए हम जितना चाहिए इतना नहीं देते हैं। मतलब बाबा ने कहा कि बच्चों की भविष्य की कमाई के लिए, भविष्य का प्रारब्ध बनाने के लिए, भविष्य का श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए, भविष्य के लिए अपना वर्तमान का जीवन का परिवर्तन करने के लिए जो समय देना चाहिए वो बच्चे समय नहीं दे रहे हैं, ये हकीकत है। तो इसलिए कल के मुरली के आधार पर हम फिर से वही बात दोहराते हैं कि इस जन्म ये मर्जीवा जमन जीवन जो है, कल बाबा ने समय आदि की बात कही है उसके ऊपर हम विचार करेंगे, इसके ऊपर बाबा ने जो कहा हुआ उसके आधार पर चर्चा करेंगे। पहली बात तो जो है बाकी जो बाबा का मैंने कहा ना ब्रह्मा बाबा और अव्यक्त बाबा, कल के दोनों के बीच की जो रूढ़ियां जो है दोनों का पार्ट कैसे अलग अलग चला हुआ है वो हम आपके पास से चर्चा करके बताऊंगा। उसके पहले एक बात बताई बाबा ने कि मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को देख बाबा बाप दादा खुश हो रहे हैं, सबके दिल में वाह बाबा निकलते हैं और बाबा के मुख से भी वाह बच्चे वाह का बोल निकल रहे हैं। अब पहली बात, पहला डिस्टिंक्शन, ब्रह्मा बाबा और अव्यक्त बाबा दोनों के बीच के डिस्टिंक्शन क्या है, रोल क्या अलग अलग है उसको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाबा ने अव्यक्त बाबा ने जो कहा सबके मन में, आपके पास मुरली हो तो आप आराम से बाद में पढ़ना, सबके मन में ब्रह्मा बाप के स्नेह की झलक दिखाई रही थी। हम सबके मन में किसके लिए स्नेह की झलक दिखाई रही थी, कल काशी अव्यक्त तो बाप दादा का ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त तो होने का था दिन, इसलिए अव्यक्त तो ब्रह्मा बाबा था, ब्रह्मा बाबा के लिए स्नेह की झलक दिखाई रही थी, सबके मन में प्यार की लहर दिखाई रही थी, ये ब्रह्मा बाबा के लिए कहा। और उसके ऊपर अव्यक्त बाबा का क्या रिएक्शन है, बाबा ने कहा बाप के मन में भी, अभी यहाँ बाप दादा शब्द नहीं है यूज किया हुआ है, बाप के मन में, कौन सा बाप, अव्यक्त बाप, अव्यक्त बाप के मन में भी हर बच्चों के प्रति प्यार की लहर आ रही थी। और बाबा ने कहा यह प्यार अलौकिक प्यार है। इस प्रकार से बाप और दादा के बीच में जो फर्क है, हमारे मन में ब्रह्मा बाप के लिए लहर थी, उसके ऊपर ब्रह्मा अव्यक्त बाबा ने कहा कि अरे बच्चों के प्रति बाप के मन में भी लहर आ रही है। फिर बाबा ने दोनों का पार्ट कंबाइन कर दिया, फिर दोनों का पार्ट कंबाइन कर, ये ड्रामा बहुत विचित्र है। घड़ी में बाबा अलग हो जाता है ब्रह्मा बाबा से, और घड़ी में दोनों इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा चलता है, तो ये समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर जो ध्यान से नहीं सुनेंगे, ध्यान से नहीं समझने का कोशिश करेंगे तो समझ नहीं सकेंगे, तो सब यही समझेंगे बाप दादा ही बोलते हैं। तो बाप और दादा का कल का रोल बहुत विचित्र था, और फिर बाबा ने दोनों का कंबाइन कर दिया, और बाप दादा ने देखा कि मेजोरिटी बच्चे प्यार की शक्ति से चल रहे थे, प्यार की शक्ति, अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, बिजली की शक्ति आप जानते हैं, हवा की शक्ति चलती है, और प्रकार की अनेक प्रकार की शक्तियां हैं उसके अंदर, आप जानते हैं ना, गुणों का सागर परमात्मा है, शक्तियों का सागर परमात्मा है, इन प्रकार के अनेक प्रकार की शक्तियों के अंदर कल बाबा ने प्यार की शक्ति, मुझे याद है 2-3 साल पहले हमारे डबल विदेशियों की यहाँ पर योग की रिट्रीट चल रही थी, पीस ऑफ माइंड रिट्रीट चल रही थी, विदेश के 250-300 बहन भाई आए हुए थे, उसके अंदर मुझे ये टॉपिक मिला था प्यार की शक्ति, पावर ऑफ लव, प्यार की शक्ति, ये बहुत उम्दा शक्ति है, उम्दा शक्ति है प्यार की शक्ति। और प्यार की शक्ति के आधार पर मनुष्य का दृष्टि बिंदु बदली हो जाता है। मैंने उसमें एक मिसाल बताया था प्यार की शक्ति का, मैंने बताया कि मैं एक बहन के पास गया था, तो उसका छोटा बच्चा था, 8-10 महीने का छोटा बच्चा था, वो जो है न बाजू में था और वो अपनी माँ को लात लगा रहा था, वहाँ पाँव से धक 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 लगा रहा था। तो मैंने उस माता को कहा कि आप देखो अभी से ही आपका बच्चा आपको लात मार रहा है, अभी से ही आपका बच्चा आपको लात मार रहा है। तो उसने कहा नहीं नहीं वो लात नहीं मार रहा है। तो मैंने कहा वो क्या कर रहा है, कहा वो साइकिल चलाता है। मैंने कहा मुझे तो साइकिल नहीं दिखाई पड़ती है कि वो साइकिल चलाता है। तो कहा वो तो आप प्यार की आंखों से देखेंगे तो आपको उसकी लात नहीं दिखाई पड़ेगी, साइकिल दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रकार से प्यार की शक्ति बहुत विचित्र होती है। विवेकानंद ने भी प्यार की शक्ति के बारे में अपना एक अनुभव कहा हुआ है, जिन्होंने विवेकानंद को पढ़ा हुआ होगा उनको मालूम होगा, विवेकानंद जो है कश्मीर में गए थे, जब कश्मीर में गए तो वहां श्रीनगर के बाजू में एक पहाड़ी है, जैसे यहाँ माउंट में गुरु शिखर की पहाड़ी है, इस प्रकार से श्रीनगर के बाजू में एक पहाड़ी है, उसको कहते हैं शंकराचार्य की पहाड़ी, बहुत स्टीप है, चढ़ना जरा कठिन है। तो विवेकानंद जी भी चढ़ते चढ़ते थक गए, तो एक वृक्ष के नीचे में जाकर के खड़े रहे, खड़े रहे। इतने में वहां की कश्मीर की एक बालकी जो है 8-10 साल की होगी, वो अपने 6-7 साल का भाई को उठा करके, गोद में उठा करके चल गाती गाती भाई के साथ खेल करती करती ऊपर चढ़ रही थी। तो विवेकानंद को लगा कि ये क्या है, ये अन्याय हो रहा है। तो विवेकानंद जी वृक्ष की छाया से निकल करके वो बहन के सामने गया और बहन को कहा कि ये बोझ क्यों उठा करके चलती है। ये विवेकानंद के किताब में लिखा हुआ अपने अनुभव, प्यार की शक्ति क्या होती है, तो ये बोझ को क्यों उठा करके चलती है। तो वो बहन ऐसे ऐसे चारों ओर देखने लगी, बोझ कहाँ है, बोझ कहाँ है, कहाँ है बोझ। फिर उसने कहा कि मेरे पास तो कोई बोझ नहीं है। तो विवेकानंद ने उसके भाई के सिर पर हाथ रख दिया, ये तो बोझ है, ये 6-7 साल का तो है, तो 8-9 साल की है, तेरे से 2-3 साल छोटा है, उसको कहो चले, क्यों उसको उठा करके, उसको बोझ के माफी उठा करके चलती है। तो बच्ची ने कहा कि ये बोझ नहीं है, तो मेरा भाई है, मैं उसके साथ खेलती खेलती ऊपर जा रही हूँ। तो विवेकानंद ने लिखा हुआ है कि मेरी निगाहों में उसका भाई बोझ था और वो बहन के दृष्टिकोण में मेरा भाई था, मैं तो उनके साथ खेलती हंसती कूदती ऊपर जा रही हूँ। तो ये प्यार की शक्ति के आधार पर, प्यार की शक्ति ऐसी है जो पहाड़ को भी राही कर देती है, ऐसी प्यार की शक्ति होती है। और इस प्यार की शक्ति का अनुभव होना चाहिए दुनिया के अंदर, हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए प्यार की शक्ति होती ही है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चों के सेवक होते हैं, गुलाम होते हैं, जो भी बच्चे चाहते हो उसकी इच्छा पूर्ण करने की कोशिश करते ही है। तो इस प्रकार से ये प्यार की शक्ति की बाबा ने बात कही कि मेजोरिटी बच्चे प्यार की शक्ति से ही ज्ञान में चल रहे हैं। बाबा का प्यार जो मिलता है, इस प्यार की शक्ति के आधार पर ही चल रहे हैं। बाप को भी हर बच्चे के प्रति प्यार आ रहा है। और फिर बाबा ने 3 तत्व की बात कही, वो तो गहरी बात है। हमारे यहाँ जो भी मेरे बदली में बाद में जो यहाँ क्लास कराने आएंगे वो 3 तत्व की बात करेंगे और कहेंगे बाबा ने जो कहा कि सारे कल्प में आत्मा को 3 तक, कोई भी आत्मा 3 तक का मालिक नहीं बन सकता है। तो इसलिए 3 तक के मालिक बन कितने भी रूहानी प्यार के नशे में रहते हो, हर एक अपने से पूछे, इतनी खुशी इतनी रूहानी नशा सदा स्मृति में रहता है। हर एक अपने आप से पूछने का कहा है, क्योंकि बाबा जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, औरों को पूछते हैं कि आपको इतनी खुशी रहती है, आपको इतना नशा रहता है, औरों को पूछते हैं, अपने को कोई नहीं पूछता है। इसलिए बाबा ने कहा अपने से पूछे कि इतना रूहानी नशा सदा स्मृति में रहता है। और फिर बाबा ने इसमें एडिशन किया कि सदा शब्द याद रहता है, बाप दादा को कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता है। ये ज्ञान की सबसे महान में महान खूबी ये है कि परमात्मा को क्या पसंद है और परमात्मा को क्या पसंद नहीं है, क्या परमात्मा को पसंद है। और परमात्मा ओपनली कहते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है। कल इन्होंने ओपनली कह दिया कि बाबा ने कहा कि मुझे कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता है। आप क्या आ गया बाबा को ओपनली अच्छा, क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है। तो ये भी ये है कि परमात्मा को पर्सनिफाइड कर करके या विश्वविद्यालय के अंदर परमात्मा के पसंदगी की बातें हम जानते हैं, और अगर उसको हम बराबर पहचान ले तो परमात्मा की पसंदगी का कार्य हम करें तो बाबा की डबल मदद मिल सकती है। तो ये बात बहुत अच्छी बात है, इसको धारण करने की जरूरत है। प्यार की शक्ति और उस प्यार की शक्ति के आधार पर खुशी और रूहानी नशा सदा ही रहना चाहिए। रूहानी नशा का शब्द मालूम है अंग्रेजी में क्या होता है? रूहानी नशा अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइन में वाइन होता है, डिवाइन में वाइन होता है। हम लोग वाइन नहीं पीते हैं परंतु डिवाइन पीते हैं, डिवाइन रहते हैं, डिवाइन बनते हैं। तो ये रूहानी नशा, स्थूल नशा की बात नहीं है, रूहानी नशे की बात है। रूहानी नशे में रहना वो कोई गलत बात नहीं है, रूहानी नशा में रहो, जितना हो सके रहो। तो इस प्रकार से बाबा ने कल ये बात कही। फिर दूसरी बात मैंने कहा ना, मैं बाबा की बातें बताऊंगा, डिस्टिंक्शन क्या है। आज सभी चाहे सामने बैठे हैं चाहे अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं, बाबा ने ये बैकग्राउंड बना लिया, कौन से बच्चे चाहे सामने बैठे हुए, और दूसरे कौन से बच्चे हैं जो अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं। अब जो अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं उसको कौन देख रहा है? आप क्या है, आप बराबर बाबा की व्यवहार की व्याख्या को सबको बराबर नोट करके रखिए। बाबा ने जो कहा, पहले कहा सामने बैठे और अपने अपने स्थानों पर बैठ रहे हैं, जो अपने अपने स्थानों पर बैठ रहे हैं उसको कौन देख रहा है? जो अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए उसको कौन देख रहा है? उसके लिए बाबा ने कहा, लेकिन बाप तो देख ही रहे, दूर होते हुए भी वो बाप के सामने है। देखिए, बाप दादा देख रहे सर नहीं कहा, और बाप दादा के सामने भी है वो भी नहीं कहा, बाप के सामने कहा। अब बाप के कर्तव्य और दादा के कर्तव्य, परलौकिक बाप का कर्तव्य और अलौकिक बाप के कर्तव्य का भेद समझना जरूरी है। जो हमारे यहाँ पुराने भाई बहन बैठे हुए होंगे उनको मालूम होगा, 69 की बात है, 69 में हमारी गुलजार दादी भोग लेकर के गई थी, तो बाबा ने बताया, अभिव्यक्त बाबा ब्रह्मा बाबा से वहां मिली थी, तो ब्रह्मा बाबा ने बताया कि आज हम दोनों, मतलब बाप दादा दोनों चक्कर भ्रमण करने के लिए, चक्कर लगाने के लिए निकले थे। जैसे कल भी बाबा ने बताया कि बाबा चक्कर लगाता ही है, इसमें चक्कर लगाने के लिए निकले हुए थे। ये बहुत समझने की बात है, कितना फर्क रहता है, वो फर्क समझने की बात है। तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने कहा कि चक्कर लगाते लगाते हम जा रहे थे, इतने में अव्यक्त बाबा को ने कहा, साकार बाबा को, हाँ ब्रह्मा बाबा को कहा, मतलब अलौकिक बाप को कहा कि बाप बच्चा तुम ठहरो इधर, मैं अभी आता हूँ। और बाबा को, ब्रह्मा बाबा को वहां 2 मिनट ठहरने के लिए बोला, और अव्यक्त बाबा चले गए और 2-5 मिनट के बाद वापस आए। तो ब्रह्मा बाबा ने उनसे पूछा कि बाबा आप कहाँ गए थे? तो कहा, एक मेरा भगत था, जो हनुमान का भगत था, उसको इच्छा थी कि मेरे को साक्षात्कार हो, तो इसलिए, नहीं तो वो अपनी खुदकशी, मतलब वो आत्महत्या करने लिए तैयार हो गया था। तो मैं इसके लिए उसके पास गया और उसका जो इष्ट देव हनुमान था उसके अंदर प्रवेश कर करके उसका उसको साक्षात्कार कराया। तो ब्रह्मा बाबा ने उनको कहा कि बाबा आपने क्यों ये तकलीफ लिया? आप सबको ये समझने की बात है, समझना पड़ेगा कि परमात्मा पिता और अलौकिक पिता के बीच में भेद सदा ही रहेगा, वो भेद की बात है। तो बाबा ने कहा कि मुझे आप भेजते थे ना, आपने क्यों तकलीफ लिया? मैं जाकर के वो हनुमान के उसकी मूर्ति के अंदर प्रवेश होकर के उसको साक्षात्कार कराता था। बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, ये तेरी बस की बात नहीं है, तू संपूर्ण बन गया, भविष्य का विश्व महाराजा बनेगा, बाकी सब कुछ होते हुए भी साक्षात्कार कराने की, या तो इस प्रकार से हनुमान की मूर्ति में प्रवेश होकर के साक्षात्कार कराने की शक्ति, ये कार्य, ये जिम्मेदारी, ये पार्ट मेरा ही है, मैं ही ये पार्ट बजाव कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते हो। ये बहुत गुह्य बात है, जिन्होंने इस प्रकार से दोनों का, बाप और दादा का, या ब्रह्मा बाबा और परलौकिक पिता शिव पिता का कर्तव्यों के अंदर का जो फर्क है, वो जिन्होंने समझा होगा वही समझ सकेंगे कि दोनों के कर्तव्य इतनी ऊंची लेवल पर जाने के बाद भी, क्योंकि एक बाप ऐसा है परमपिता परमात्मा, वो जन्म मरण से बिल्कुल न्यारा है, और अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा जो है वो जन्म मरण के चक्कर में आने वाले नरसे नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनने वाला, विश्व महाराजा विश्व महारानी बनने वाले की पार्ट के अंदर का है, और 84 जन्म लेते 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 अंतिम जन्म में ब्रह्मा बन करके उसके तन में, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं। तो ये दोनों के पार्ट को अच्छी रीति से समझना और वो समझने के आधार पर अपने जीवन व्यवहार को करना, ये बहुत ही गुह्य बात है। दोनों के बीच का फर्क जो है उसको अगर हम नहीं समझेंगे तो समझेंगे ये कौन है, ये क्या है, और जिसके कारण क्या होता है कि कई बार दोनों के बीच का भेद नहीं समझने के कारण कई ऐसे समूह जाते, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, इस प्रकार का होता है, ये होता है। हम हमारी दादी ब्रिजेंद्र ने एक बार अनुभव सुनाया था, दादी ब्रिजेंद्र ने बताया था कि वैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर के ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा ने क्या किया, पुष्पमणि करके एक बहन थी, उस पुष्पमणि बहन मेंटली थोड़ी रिटायर्डेड थी, वो मेंटली रिटायर्डेड माता के तन में, मतलब बहन के तन में अव्यक्त बाबा 15 दिन का आए और 15 दिन उनके तन का लोन लेकर के उसके ही तन में आकर के कारोबार करते थे और उसकी संभाल के लिए दादी ब्रिजेंद्रा को नियुक्त किया था। एक दिन क्या हो गया, दोपहर में पुष्पमणि बहन जी के तन में बाबा उसमें से कोई जगह पर चले गए थे, कुछ काम होगा इसके कारण, तो उसका तन निश्चेतन होकर के पड़ा हुआ था। तो मम्मा वहां गई तो मम्मा ने देखा दादी ब्रिजेंद्रा उसके बाजू में बैठ करके पुष्पमणि बहन का तन का ध्यान रख रही थी। तो मम्मा ने बाबा दादी ब्रिजेंद्रा ने पूछा कि ये कौन है, ये क्यों ऐसा होता है, ये क्या है। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। इतने में अव्यक्त बाबा जो है जो ज्ञान जो काम करना था वो करके फिर वापस उस तन में आ गए और तन में आकर के उठ करके दादी ब्रिजेंद्रा को और मम्मा को कहने लगे कि अभी तक आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आप सब मुझे पहचान सको, इसके लिए तो इस तन में आता हूँ कि मैं ब्रह्मा बाप से अलग हूँ और मैं अपना दिव्य कर्तव्य करने के लिए ब्रह्मा बाप के तन के द्वारा अपना कार्य करा रहा हूँ। तो ये परमात्मा पिता का और ब्रह्मा बाप के दोनों के कर्तव्य के बीच के भेद को समझने के लिए, समझाने के लिए मैंने ये 15 दिन के लिए पुष्पमणि दादी बहन का तन का आधार लिया हुआ है। बहुत गुह्य बातें हैं, अगर इस गुह्यता को नहीं समझेंगे तब तक क्या हो जाएगा। हाँ, परमात्मा के पार्ट को और ब्रह्मा बाप के पार्ट को हम समझ नहीं सकेंगे और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एक जन्म मरण के चक्कर में आने वाला है और एक अजन्म होते हुए भी संगम युग पर परमात्मा ब्रह्मा बाप के तन का आधार लेकर के कार्य कराते हैं। ये तन का आधार लेना और जन्म से ही तन लेकर के कार्य करना, इसमें कितना फर्क है, ये बहुत 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 गुह्य बातें हैं। जो समझ सकेंगे उनके लिए ही ये बात है। तो कल की बात भी जो है, बाबा ने कहा बाप देख रहा है, चारों ओर के बच्चे जो यहाँ हमारे सामने तो नहीं थे, हम भी नहीं देख रहे थे, परंतु बाबा देख रहे थे। कौन कौन सा बाप देख रहा था, परलौकिक बाप, परम पिता परमात्मा जो देख रहे थे। क्यों कि बाबा कहते दूर होते वो ये बाप के सामने है। आप समझा, दूर होते हुए भी बाप के सामने, बाबा ने ये नहीं कहा दूर होते हुए बाप दादा के सामने है। और बाबा ने क्या बताया, और बताया कि बाप ने देखा, कौन सा बाप, परलौकिक पिता जो है उसने देखा कि हर एक बच्चा आज विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में समाये हुए थे। किसके स्नेह के प्रति, ब्रह्मा बाप के प्रति। किसने देखा, अव्यक्त बाप ने देखा, देखा हुआ था। और फिर बाबा ने स्नेह, जैसे ऊपर बताया ना प्रेम की शक्ति है, प्रेम की शक्ति जो है बाबा, प्यार की शक्ति बताई, इस प्रकार से बाबा अभी स्नेह की शक्ति के बारे में कहते हैं कि स्नेह जो है ना वो मुश्किल बात को भी सहज करने वाला होता है। स्नेह जहाँ होता है वहाँ मुश्किल बात को भी सहज हो जाता है। तो फिर बाबा ने फिर दोनों का पार्ट मिक्स कर दिया, वो देखने की बात वो अलग बात थी, बाप और दादा के पार्ट का विभिन्न किया, फिर दोनों का मिक्स करके बाबा कहते हैं तो बाप दादा हर एक बच्चे से अति स्नेह करते हैं, अलौकिक बाप भी करता है और परलौकिक बाप भी करता है, चाहे पुरुषार्थ ही है लेकिन सभी बाप के बच्चे हैं। तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा मुख से सदा शब्द निकले, हो सकता है। इस प्रकार से बाबा ने फिर दोनों का बीच का पार्ट कंबाइन कर दिया। बहुत गुह्य बातें हैं, कल ये दोनों का बीच के पार्ट को, गुह्यता को समझना बहुत बहुत जरूरी है। हर दुनिया के अंदर परिवार में रहते हैं छोटे बच्चे को भी मालूम होता है हर एक का पार्ट अपना है, बाप का पार्ट अलग है, माँ का पार्ट अलग है। खाना चाहिए तो बच्चा किसके पास जाएगा, खाना चाहिए तो बच्चा माँ के पास जाएंगे, और स्कूल की फीस भरनी होगी तो किसके पास जाएगा? बाप के पास जाएगा। और कुछ सफाई करवाना हो कुछ हो तो नौकर के पास जाएंगे। घर के अंदर छोटे बच्चों को भी अक्ल होती है कि बाप का पार्ट क्या है, माँ का पार्ट क्या है, नौकर का पार्ट क्या है। खेलना होगा तो अपने साथियों के साथ खेलेगा। इस प्रकार से जैसे वो पात्रता के आधार पर, समय के आधार पर, व्यवहार के आधार पर छोटा बच्चा भी डिस्टिंक्शन करता है कि बाप से क्या कराना का है, माता से क्या कराने का है, अपने भाइयों से क्या कराने का है और अपने नौकर से भी क्या कराना। इस प्रकार से हमें ये बाप और दादा के दोनों के कर्तव्यों के बीच का भेद समझ करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। ये यज्ञ का सारा ही कारोबार समझना पड़ेगा। तो इसलिए कल का ये मुरली का सार यही है कि बाप और दादा के बीच का भेद को हम बराबर समझें। तो बाबा ने क्या कहा, दूसरा बाबा ने कहा सदा शब्द आपसे सदा शब्द सहज है, लक्ष्य रखेंगे। बाबा ने बहुत एक सुंदर सनातन सत्य बताया हुआ है कि लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण आ ही जाएंगे आएंगे। हम क्या करते हैं, पहले लक्षण चाहते हैं फिर लक्ष्य करते हैं। बाबा ने क्या कहा, पहले गाड़ी होनी चाहिए, पहले घोड़ा होना चाहिए। हाँ तो बाबा के दुनिया में तो क्या होता है, पहले गाड़ी का ध्यान रखते, घोड़े का ध्यान नहीं रखते। बाबा कहते पहले घोड़े का ध्यान रखो, लक्ष्य का ध्यान रखो तो लक्षण आ ही जाएंगे। तो इसलिए लक्ष्य रखो, साध्य और साधना, साध्य और साधना के बीच में जो फर्क है यही फर्क लक्ष्य और लक्षण के अंदर है। तीन शब्द अलग अलग है संस्कृत साहित्य में, साध्य साधन और साधना। साध्य है हम सबको परमपिता परमात्मा में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना, ये हमारा साध्य है। उसके लिए साधन क्या है, ज्ञान योग धारणा और सेवा। और साधना क्या है, पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। वो करने से क्या होगा, हमारा लक्ष्य जो है उसको हम प्राप्त कर सकेंगे। तो इसलिए कल बाबा ने कहा लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण आ ही जाएंगे। क्यों क्यों लक्षण आ जाएंगे, बाबा ने एक सनातन सत्य जिसको कहते हैं अंग्रेजी में सोलम प्रॉमिस, सोलम प्रॉमिस। परमात्मा भी वचन देता है, जैसे हमारे मुरली के हाथ में अंत में वरदान होता है, इस प्रकार से कल बाबा ने मुरली के बीच में वचन दिया। क्या वचन दिया, क्योंकि बाप दादा सदा मददगार है, बाप की मदद का सदा अनुभव करना ये बहुत कठिन बात है। सदा के लिए बाप के, बाप अपना मददगार है और बाप की मदद को रिकग्नाइज करना और रिकग्नाइज कर करके उसको अपनाना और बाप दादा करार रखे इस प्रकार की मान्यता के आधार पर अपने आप को, अपना अहंकार को छिपा करके बाबा ने कराया, बाबा ने कराया, इस प्रकार का कारोबार करना चाहिए। आदि जानकी के पास हम जाते हैं तो बाबा का चित्र सामने रखा हुआ है। दादी हमेशा ही कहते रहते हैं, दादी जानकी जी क्या ये बाप जो है बाबा की उसके आधार पर ही मैं चलती रहती हूँ, बाबा चलाता है मैं चलती रहती हूँ। इस प्रकार की भावना रख करके अगर हम कार्य करें तो हमारे लिए इस दुनिया के कोई भी कार्य कठिन नहीं हो सकता है, क्योंकि बाप दादा मददगार है। बाप के ऊपर 100% फेथ विश्वास रखना चाहिए। और बाबा ने क्या किया, बाबा ने कहा वाह बच्चे वाह, ताली बजाने की बात कही। फिर बाबा ने क्या कहा, फिर बाबा ने फिर अपना दोनों का पार्ट आगे मिस करके कहा कि बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं लेकिन चारों तरफ के बच्चों को देख प्यार से कहते वाह बच्चे वाह। और बाबा ने भी दूसरा एक रिजल्ट बताया, रिजल्ट बताया। बाबा मुरली के अंदर बहुत कुछ बता देता है पर तो हम समझते नहीं है, हम समझते हैं कि ठीक है हाँ चलता रहता है, ऐसा नहीं है। बाबा कई बातों का रिजल्ट बता देता है। बाबा ने एक कल रिजल्ट बताया कि मेजोरिटी बच्चे ये रिजल्ट क्या है, मेजोरिटी बच्चे बाप दादा से दिल के प्यार में नंबर वन है। मेजोरिटी बच्चे बाप दादा से दिल के प्यार में नंबर वन है। ऐसे सदा विजयी, ऐसे सदा विजयी भव, इसके अंदर भी कभी कभी शब्द नहीं होना चाहिए। हम सदा के लिए विजयी है, हमारी हार कभी भी नहीं हो सकती, हम सदा के लिए विजयी है। इस प्रकार का नशा होना चाहिए कि हम सदा विजयी है, उस प्रकार का नशे के आधार पर हमारा कारोबार होना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा कि इसके अंदर भी सदा का शब्द हो सकता है, अर्थात कभी कभी का शब्द निकल जा सकता है, उसमें भी हाथ उठाओ। और फिर सबने हाथ उठाया तो बाबा ने कहा बड़ा हाथ उठाओ और हिलाओ। फिर बाबा ने हस्ती में कह दिया बच्चे हाथ तो बहुत अच्छी दिल से हिला रहे। और फिर बाबा ने नई एक बात कही, बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख करके बहुत खुश होते हैं। तीन शब्द मतों में आता है, तीन शब्द मत में, एक हिम्मत, हिम्मत में भी मत है, सॉरी एक मत अपनी मन मत, एक मन मत में मत है, दूसरा हिम्मत में मत है, और तीसरा है श्रीमत में मत। मत, मन मत, हिम्मत और श्रीमत। अभी हमें अपने आप को देखना है हमारे पास कौन सी मत है। मन मत है, मन मत है तो क्या हो सकता है वो हम सब जानते हैं। और उसके बदले में बाप दादा की हिम्मत के आधार पर हिम्मत से चलना चाहिए। और तीसरा है श्रीमत पर चलने का। तो बाबा कहते हैं देखो, एक एक बच्चे से बाप का, एक एक बच्चे से बाप का। फिर बाबा ने पार्ट दोनों का क्लियर किया, दोनों बाप, बाप दादा दोनों का दिल का प्यार सदा ही बच्चों के लिए है और सदा रहेगा। यह अभय वचन है, दोनों बाप का प्यार हम सब बच्चों के लिए सदा, प्यार सदा है और सदा रहेगा। फिर भी क्या होता है, फिर भी बाबा कहते हैं अगर चलते चलते, अगर चलते चलते थोड़ा सा माया का वार हो भी जाता है, किसके ऊपर होता है माया का वार, किसके ऊपर होता है, हमारे ऊपर होता है या बाबा के ऊपर होता है? हमारे ऊपर होता है कि माया का वार थोड़ा सा भी हो जाता है तो बाबा ने कहा कि बाप का प्यार समाप्त नहीं हो सकता। तो बाप का प्यार समाप्त नहीं हो सकता। और उसके बदले में क्या होता है, दुनिया में भी ऐसा ही होता है, कोई बच्चा बीमार होता है तो उसको उसका माँ बाप का प्यार ज्यादा मिलता है। इस प्रकार से यहाँ भी है, और ही बाप दादा साथी बच्चों को यही कहते हैं कि उनको एक्स्ट्रा सहयोग प्यार देख करके उड़ाओ। साथी बच्चों को हम सबको कह रहे हैं कि जिनके ऊपर माया की वार हुई है, जिस माया के कारण वो ठीक नहीं चल पाता है, ऊपर नीचे उनके व्यवहार चलता रहता है, हम माया की परीक्षा में वो फेल होता जाता है, ऐसे बच्चे जो भी होते हैं ना उनको बाबा कहते हैं साथी। हम जो मेरे साथी बच्चे हैं उनको कहता हूँ मैं कि ऐसे एक्स्ट्रा सहयोग दे करके, एक्स्ट्रा सहयोग और प्यार दे करके उसको भी उड़ाओ, ज्ञान मार्ग में चलाओ, उड़ाओ। उड़ने को लिए कहते हैं। एक बाबा ने क्या कहा है मालूम है, एक ये चलते हैं, फिर तीन प्रकार के बच्चे हैं, एक अव्यक्त मुरली आप लोगों को याद होगी, एक है बच्चे जो चलते हैं, दूसरा है दौड़ते हैं, और तीसरा बच्चे है जो उड़ते हैं। चलना, दौड़ना और उड़ना, ये सब पुरुषार्थ के लक्षण है। तो बाबा ने एक बार अनाउंस कर दिया है, ओपनली अनाउंस कर दिया है कि चलने वाले जो बच्चे जो है वो समय तक या समय से पहले मंजिल पर पहुंच नहीं सकेंगे। इसलिए जो बच्चे सिर्फ चलते रहते हो, इनको ये बाबा की वार्निंग है कि चलते रहने वाले बच्चे, जो लक्ष्य रखा हुआ है संपूर्ण बनना, श्रेष्ठ पद प्राप्त करना, विश्व महाराजा विश्व महारानी के फैमिली के अंदर सदस्य बन करके श्री कृष्ण और श्री लक्ष्मी या नारायण के साथ रास करना, ऐसे ऐसे जो श्रेष्ठ लक्षण रखा हुआ है, पुरुषार्थ रखा हुआ है, उसको जो चलने वाले होंगे वो प्राप्त नहीं कर सकेंगे। चलने के बदले में दौड़ने वाले हैं और दौड़ने के बदले में उड़ने वाले। कल बाबा ने क्या कह दिया, ऐसे जो भी है जिसको माया के कारण परीक्षा में फेल होते रहते हैं, ऐसा जो भी है उनको साथ देकर के, एक्स्ट्रा सहयोग देकर के उनको उड़ाने की मेहनत करिए। हम क्या करते हैं, औरों को चलाने की कोशिश करते हैं और हम ओपनली बोलते हैं और हमारी क्लास की टीचर भी कई बार ओपनली बोलते। कल भी एक बहन आई थी, कहती थी कि 10 साल से ज्ञान में चलता है। तो मैंने उनसे पूछा ये चलता है, तब तो उसने बहन ने कहा हाँ चलता है। मैंने कहा तो दौड़ना कब शुरू करेगा, तो वो बहन को ख्याल में आया कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया बोलने में। एक है चलना, हमारी बहनें हमको कहती भी, हमारे परिचय में भी कहती है कि इतने समय से ज्ञान में चलता है। अपने आप से पूछिए, हम चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं या उड़ते रहते हैं? कौन सी स्थिति अच्छे में अच्छी है आप नक्की करिए, सोचिए। चलना अच्छा है, दौड़ना अच्छा है या पुरुषार्थ के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उड़ना अच्छा है? ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है ना, वो कई घड़ी घड़ी कई जगह पर जाकर के दौड़ना सिखाती है। कल बॉम्बे में 20 तारीख है, हाँ कल बॉम्बे के अंदर भी इनका दौड़ने की उड़ने दौड़ने का और उड़ने का कारोबार चलने वाला है। कई जगह पर चलता है, 15-10 दिन पहले अहमदाबाद में चला, उसके पहले दिल्ली में चला, कई जगह पर ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक करती है। तो ये दुनिया की बैंक ऐसा हम लोगों को दौड़ने की सिखाते हैं, हम लोग क्यों नहीं अपने आप अपने जीवन के अंदर अपने पुरुषार्थ के अंदर दौड़ने का और दौड़ करके उड़ने का प्रयत्न न करें? क्यों, लक्ष्य पर पहुंचना हो, जो भी लक्ष्य पर पहुंचना हो उसको प्राप्ति करने के लिए अभी चलने का जमाना गया। जो चलता रहेगा वो खोता रहेगा, समय पर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकेगा। ये वार्निंग कल की मुरली से हम सबको सीखने की है। और इसलिए क्या करने का है, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ बात तो यही है, उड़ने की बात है। और इसके लिए बाबा ने सावधानी दिया। बाबा कहते हैं अब बाप दादा यही चाहते हैं कि समय को तो सब बच्चे जानते ही हो, समय को जानते हो ना, कौन सा समय बीत रहा है, क्या क्या हो रहा है। रोज भी कोई ना कोई अखबार में आते हैं, समय की समस्या का ही बातें आती रहती है। तो अगर समय को तो सब जानते हो, समय कहाँ जा रहा है वो भी सब जानते हैं, सब जानते हैं समय कहाँ जा रहा है, उसके अंदर समय कहाँ जा रहा है वो हम सब जानते हैं, परंतु वास्तव में समय नहीं जाता है, हम जा रहे हैं। भर्तृहरि ने बहुत सुंदर कहा है, कालो नहीं आती वयमेव आता, तृष्णा जीना वयमेव जीना है। इसलिए समय नहीं जाता है, हम जाते हैं, हम वृद्ध होते जाते हैं, कलयुग आ रहा है, हमारे जीवन से ही व्यवहार इसके ऊपर होता रहता है। तृष्णा जो हमारी इच्छा है जो है वो समाप्त तो कभी नहीं होती है, हम जीर्ण होते रहते हैं, इस प्रकार की बातें हैं। हाँ तो ये समय कहाँ जा रहा है वो सब जानते हैं, और समय को देखते बाप दादा को अचानक की बात बाप दादा की अचानक की बात को याद करो। बाबा ने कहा है जो भी होने वाला है वो अचानक होने वाला ही है, और इसलिए फिर बाबा की इच्छा, मैंने बताया ना हम बाबा की पॉजिटिव इच्छा भी मालूम पड़ती है, बाबा को क्या पसंद नहीं है वो भी पसंद। ऊपर जैसे बताया ना कि बाबा को कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता है, ऐसे बाबा ने कल अपनी दिल की बात कही। बाबा को क्या कहें, बाबा की बाप दादा की यही दिल की आश है कि एक भी बच्चा पीछे ना रह जाए, ये पॉजिटिव इच्छा है बाबा की, ऊपर नेगेटिव इच्छा कि ये बाबा को पसंद नहीं है, परमात्मा की पसंद की ना पसंद की ये इसी विश्वविद्यालय में मालूम पड़ सकता है। दुनिया में किधर भी ये बात मालूम नहीं पड़ेगी, परमात्मा को क्या पसंद है, परमात्मा को क्या पसंद नहीं है। कल बाबा ने पहले बता दिया कि मुझे ये शब्द पसंद नहीं है कभी कभी का, विजयी के अंदर भी कहा कभी कभी नहीं, सदा के लिए विजयी। और अभी क्या कहा, बाप दादा की दिल की आश है कि हर एक बच्चा पीछे न रहे, साथ रहे साथ चले, साथ रहे साथ चले, ये बाबा की इच्छा है, सबकी इच्छा है, सब बाबा की ये इच्छा पूर्ण करेंगे, हाँ साथ रहे और साथ चलेंगे। बाबा के फिर बाबा कहते हैं स्थूल नहीं साथ में चलना, स्थूल नहीं साथ में चलना। हमारे पास क्या होता है, अनेक प्रकार के बहन भाई हैं, कई बातें कई बहन भाई स्थूल रूप में ले लेते हैं। मैं आपको बताऊं कैसे बाबा के बच्चे हम बच्चे स्थूल रूप में साथ को ले लेते हैं। बाबा ने कहा है कि बच्चों को बाप समान बनना है, कहते हैं ना बाप समान बनना है। हाँ तो क्या हो गया, एक भाई मेरे पास आ गया कि मेरे को बाप समान बनना है, मैंने कहा जरूर बनो। तो कहा मुझे एक बात बताओ, बाबा गंजी पहनते थे, मैंने कहा हाँ पहनते थे। तो बाबा वो गंजी जो है वी शेप का पहनते थे या राउंड शेप का पहनते थे, आपने नहीं समझा उसका भेद। बाप जो गंजी पहनता था ना, अंदर गंजी पहनते हैं ना, हमारे ज्ञान में सब पहनते हैं, हाँ तो ज्ञान वो जो गंजी जो है वी शेप का या गोल शेप का राउंड शेप का। मैंने कहा क्यों, क्या मुझे बाप समान बनना है ना, तो बाबा अगर गोल राउंड शेप का गंजी पहनता तो मैं राउंड शेप का पहनूं। मैंने कहा भाई साहब राउंड शेप का गंजी पहनने से आप बाप समान बनेंगे ऐसी बात मत कहो, ये बाबा का कोई स्थूल बात नहीं है, सूक्ष्म बात है। ओम शांति। तो मैं बता रहा था साथ रहना साथ चलना में क्या होता है, साथ रहना स्थूल में तो हो नहीं सकता है, लेकिन जो बाप चाहता है और परिवार भी चाहता है, साथी चाहते हैं, उसमें समान और साथी बन करके चलना, यही बाप के साथ चलना है। हाँ तो जो साथी बनकर के समान बनकर के चलना। फिर दूसरी बात, फिर बाप दादा के बीच के दोनों का ड्रामा कल जो चल रहा था उसकी बात है। आज के दिन बाप दादा के पास प्यार की लहरें चारों ओर से हर बच्चे की पहुंची, ऐसे ही बाप दादा की शुभ आशा है कि हर रोज अमृत वेले से लेकर के रात तक जो भी मन वचन कर्म से कार्य करते हो उसको चेक करो। और फिर बाप का कहना है, बाप का कहना और मेरा करना समान रहा, परमात्मा ने जो कहा हुआ है वो और मैं अपना मन से जो चाहता हूँ समान रहा। हो सकता है इजी है, बाप तो मुरली में रोज कहता है, तो बाबा ने ये चेक करने के लिए जिम्मेदारी दिया है कि हर एक चेक करे कि बाप का कहना और मेरा करना एक समान रहा। अब देखिए यहाँ पर भी बाप माना बाप दादा नहीं है, बाप का कहना और मेरा करना एक समान रहा। और इसके लिए ये मुश्किल क्यों नहीं, मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि हर रोज रात को सोने से पहले अपना रोज का रिजल्ट का चेक रिजल्ट चेक करते हो ही होगे। ये हर एक को अपने जीवन में रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट जो है अपने जीवन व्यवहार के बारे में चेक करने के लिए बाबा ने कहा है। और फिर भी बाबा आगे बोलते रहते हैं, बाप की बात करते हैं, बाप अभी भी चाहते हैं कि आप बच्चे स्वयं संपन्न बन समय को समीप लाओ। ये कौन चाहता है, बाप चाहता है कि स्वयं बच्चे स्वयं संपन्न बन और समय को समीप लाओ। ये बाप की चाहना है। अब ब्रह्मा बाप की देखिए, हाँ अब बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप भी, देखो डिस्टिंक्शन हो गया। जो सूक्ष्म समझ सकते हैं उनको ये मालूम रहेगा। हाँ पहले बताया बाप अभी भी चाहते हैं कि आप बच्चे स्वयं संपन्न बन, समय को समीप लाओ, ये अव्यक्त बाप की आशा है। और ब्रह्मा बाप की आशा क्या है कि ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहे। आपने पढ़ा समझा दोनों के बीच का फर्क। ये कल बहुत सुंदर ड्रामा चल रहा था, बाप और दादा के बीच का बहुत सुंदर ड्रामा चल रहा था। जो समझने वाले समझ गए, उसको बहुत मजा आती। कल हमको बहुत मजा आई। हाँ बाबा के, हाँ दोनों के, बाप और दादा के दोनों के संबंध याद, अव्यक्त बाबा और पारलौकिक बाप के संबंध के बीच में, कि ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहा है। ब्रह्मा बाप अभी देखा, ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहे हैं कि आओ बच्चों साथ चले अपने राज्य में, आओ बच्चे साथ चले अपने राज्य में। श्री बाबा ये नहीं कह सकता है। श्री बाबा सत्युग में आएगा? श्री बाबा सत्युग में नहीं आएगा तो किसके साथ में हमको आना पड़ेगा? ब्रह्मा बाबा। इसलिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा के नाम पर कहा कि ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहे हैं कि आओ बच्चों साथ चले कहाँ? अपने राज्य में। ये दोनों का बीच का फर्क समझ गए? ख्याल में आया? अब राज्य में किसके राज्य में चलना है, किसके साथ चलना है? ब्रह्मा बाप वो हमको आह्वान कर रहा है कि ब्रह्मा बाप के राज्य साथ में चल करके ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में चलना है। ये मैंने कहा ना, ये दोनों के बीच का कल जो सूक्ष्म ड्रामा जो चला ना, बहुत सुंदर था। समझने वाले जो है समझ गए होंगे, तो इनका कल की मुरली की जो स्वीटनेस थी, मजा जो थी, दोनों को पार्ट को समझने का बहुत सुंदर बात थी। और इसलिए बाबा ने कल क्या आओ बाबा की, फिर ब्रह्मा बाबा की क्या इच्छा है, आओ आत्माओं को भी क्या करें, आत्माओं को मुक्ति का गेट खुला करके मुक्ति का पाठ बजाने दो। किसको राज्य, किसको मुक्ति, किसको राज्य, किसको मुक्ति, हाँ दोनों के लिए ब्रह्मा बाबा ने कह दिया। कई आत्माओं को मुक्ति का गेट उसके लिए खोल दे, कईयों को मुक्ति का और कईयों को राज्य का। मैं असीम हमेशा ही कहता हूँ कि श्री बाबा ने सबको एक समान वरदान दिया है। श्री बाबा ने सबको एक समान वरदान दिया है। बाबा ने कहा है, मैं सबके लिए कहा है, मैं सोने की दुनिया ला रहा हूँ। क्या कहा? मैं सबके लिए सोने की दुनिया ला रहा हूँ। अब सोने का दो अर्थ होता है। सन्यासी महात्माओं ने सोने की दुनिया माना परम धाम के अंदर 2500 वर्ष तक सोने का, और उसके बाद द्वापर युग से अपना पाठ बजाने के लिए आने का, उनके लिए वो सोने की दुनिया है। आप समझे? सबके लिए सोने की दुनिया, और सन्यासी महात्माओं ने समझा वो सोना माना परम धाम में 2500 वर्ष तक सोने की दुनिया, सोने का रहेगा। उसके बाद द्वापर युग के बाद उनका पाठ यहाँ आना होगा, वो आते रहेंगे अपना पाठ बजाएंगे। और हमारे लिए सोने की दुनिया, गोल्डन एज, दोनों के लिए सोने की दुनिया। अभी आप बताओ आपको कौन से सोने की दुनिया चाहिए? मुक्ति वाली सोने की दुनिया या जीवन मुक्ति वाली सोने की दुनिया? दोनों को समान है, इसलिए बाबा किसी को भी दिल को किसी को भी नाराज नहीं करते। दोनों को सोने की दुनिया का वरदान देते, एक ने वो लिया एक ने ये लिया। इसलिए बाबा ने कल कहा ना, किसको राज्य और किसको मुक्ति। कितनी सुंदर बात, एक छोटे से महावाक्य में बाबा ने सारी दुनिया का भेद सामने रख दिया। किसको राज्य, किसको मुक्ति, माना किसको गोल्डन एज और किसको सोने की दुनिया। दोनों को समान सोने की दुनिया मिलती रहती है। कितनी अच्छी बात है, कितना सुंदर साहित्य भी है, और कितना कम शब्दों में बाबा ने नई बातें बता दिया। फिर बाबा ने कहा, आज अमृत वाले से स्नेह की मालाएं सबके तरफ पहुंच गई। बाबा फिर बाप दादा सबको माला भेजने वालों को मुबारक दे रहे। अब क्या करना चाहते हैं? बाबा कहते क्या करना है, अब जो बाप दादा और आपकी चाहना है कि सब संपन्न संपूर्ण बन जाए, इस कदम को और तीव्र करो। आपकी भी पसंद है ना दुख और अशांति, अपने भाई बहनों की आपको सुनने से अच्छा नहीं लगता है, तो अब आपस में मिलके और बातों में न समय देते हुए ये प्लान बनाओ। इसके अंदर एक इतने महावाक्य में बहुत कुछ बाबा ने कह दिया है। हम फालतू बातों में बहुत समय व्यतीत करते हैं, कितने प्रकार के संघर्ष में हमारा टाइम जाता है, कितने प्रकार के संघर्ष, जब है ही बाप का फिर हम संघर्ष क्या करें, फिर भी अनेक प्रकार के संघर्ष की बात। इसलिए बाबा ने क्या किया, आपस में मिलकर के और बातों में समय न देके यह प्लान बनाओ कि दुखी और अशांत अपने भाई बहने जो है वो नहीं रहे, उनके दुख और दर्द और अशांति दूर करने का वो प्लान में समय निकालो ना, बाकी फालतू बातों में ब्रह्मा बाबा कहते क्या कहते जड़मुई जंगमुई ऐसे कुछ क्या शब्द कहते थे, सिंधी शब्द है, फालतू बातों के अंदर बाबा की कल भी बात यही है कि और बातों में समय नहीं दे करके यह प्लान बनाओ। पर तो क्या करें, हम ये प्लान नहीं बनाते, फालतू बातों में ही बहुत जाते समय व्यतीत करते रहते, बहुत फालतू बातों में। इसलिए अपने जीवन के व्यवहार को चेक करिए कि ईश्वरीय सेवा के फील्ड में होते हुए, चाहे समर्पित जीवन में, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले, अपने आप से पूछे कि हम फालतू बातों में कितना समय देते हैं और काम की बातों में कितना समय देते हैं, और बाप की क्या इच्छा है कि दुख और अशांति जो है इनको दूर करने के लिए, इसके लिए यह प्लान बनाओ। चारों ओर संपन्न और संपूर्ण बनने का उमंग उत्साह हो। हमारा ईश्वरीय जीवन का मिशन क्या होना चाहिए, चारों ओर संपन्न और संपूर्ण बनने का उमंग उत्साह हो। फिर अलग बात कही, फिर बाप और दादा के बीच का भेद, फिर बाप दादा का बीच का भेद, बाप ब्रह्मा बाप यही चाहते हैं, आपने समझा, फिर दोनों के बीच में का डिस्टिंक्शन, ब्रह्मा बाप यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा मेरे समान संपन्न बन जाए। ब्रह्मा बाप यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा मेरे समान संपन्न बन जाए। यह ब्रह्मा बाप की, आप हम बच्चों को बाबा पूछ रहे हैं, अब एक तो बाप पूछ रहा है कि ब्रह्मा बाप की यह चाहना आप पूर्ण करेंगे। ब्रह्मा बाप की यह चाहना, कौन सी चाहना, एक एक बच्चा समान और संपन्न बन जाए, ये ब्रह्मा बाप की आश पूर्ण करेंगे। देखिए दोनों के बीच की आश में फर्क, ये दोनों की आश में फर्क समझना पड़ेंगे। वैसे मैंने कल कहा ना, ये दोनों के बीच का जो रोल में फर्क है, व्यवहार में फर्क है, बाबा ने यहाँ स्टेज पर बैठ करके ये दोनों का व्यवहार अलग बताया। तो आज ब्रह्मा बाप देखो, फिर और ब्रह्मा बाप क्या कर रहा है, आज ब्रह्मा बाप चारों ओर के बच्चों के ऊपर स्नेह और शक्तियों की लहर व शुभ संकल्प की लहर फैला रहे थे। ये कौन कर रहा था, याद रहे कल क्या बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा बाप चारों ओर के बच्चों पर स्नेह और शक्तियों की लहर व शुभ संकल्प की लहर फैला रहे थे। ये बात ब्रह्मा बाप की कही, अब अव्यक्त बाप क्या कहते हैं उसके ऊपर वो आप सुनिए। बाप भी, कौन सा बाप, परलौकिक बाप, बाप भी ब्रह्मा बाप से बच्चों का प्यार देख करके आज फूल फैलाने का दिन है, तो बाप भी शुभ आशाओं के फूल कहा और किया, इस उम्मीदों के नहीं लिखे तीव्र पुरुषार्थ के फूल आप चारों ओर के बच्चों के ऊपर डाल रहे थे। आपने समझा, ब्रह्मा बाप की क्या इच्छा है, चारों ओर के बच्चों के ऊपर स्नेह और शक्तियों की लहर व शुभ संकल्प की लहर फैला रहे थे, वो बाप कर रहा था, कौन सा बाप, ब्रह्मा बाप। और अव्यक्त बाप क्या चाहते हैं, ब्रह्मा अव्यक्त बाप भी ब्रह्मा बाप से बच्चों का प्यार देख करके, ब्रह्मा बाप का हम बच्चों के ऊपर प्यार जो है उसको देख करके आज फूल फैलाने का दिन है ना, चारों ओर कल फूल कितने थे, ऊपर भी आप गए होंगे तो देखा होगा फूल 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 सब जगह पर था। तो बाप की आशाओं के फूल कहा और किया, इस उम्मीदों के नहीं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ के फूल आप फूल आप चारों ओर के बच्चों के ऊपर डाल रहे थे। कौन डाल रहा था? अव्यक्त बाप। किसके ऊपर? हम बच्चों के ऊपर। किस बात के लिए? कि ब्रह्मा बाप की जो है स्नेह और शक्तियों की लहर या शुभ संकल्पों की लहर फैला रहे थे। तो ये कल जो है ना, ये दोनों के बीच का व्यवहार के बीच में फर्क जो है वो समझने की बात है। फिर बाबा ने बुरली समाप्त किया, अच्छा करके समाप्त किया। बाप दादा हर बच्चे को, चाहे नए भी आए हो, पहली बार जो आए आए हैं, वो उठो उसको देखा। हाँ, बाबा ने कहा बाप दादा के याद पे शिकार हो। कल बाबा के अभी आस्ते आस्ते बाबा जो नए बच्चों को आने वाले को कह देते हैं लास्ट तो फास्ट, फास्ट तो फर्स्ट, इस प्रकार की बातें अभी नहीं करते। कल भी देखा बाप दादा खुश है, लेकिन करमाल करके दिखना है, दिखाना है। देख रहे हर बच्चा सामने दिखाई दे, चाहे वह लास्ट है, चाहे वहाँ है, चाहे लास्ट में, लेकिन सामने ही दिखाई दे रहा है। एक बच्चे को बाप दादा के हाथ पे शिकार हो, और इसलिए सबको कहा, चाहे पुराना चाहे सब, सबके लिए बाबा ने कह दिया, एक डायरेक्शन दे दिया है कि अभी परिवर्तन जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी परिवर्तन करना पड़ेगा। आगे उसके लिए मुबारक, और अभी पुरुषार्थ कर नंबर आगे लेने की मुबारक लेना। हाँ, पुरुषार्थ करके बाबा जो पहले लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, वो आगे वो बात चली गई। अब बाबा क्या कहते हैं, जो नए आए हैं उसको क्या कहते हैं, पुरुषार्थ करके पुरुषार्थ कर नंबर आगे का लेने का, फिर मुबारकबाद देंगे। आगे का नंबर लो, वो फास्ट लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट वाली बात अभी चली गई है। इसलिए ध्यान रहे, जो भी नए भाई बहन आए हुए हैं वो उनके लिए लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट की बात के बदले में आगे का नंबर की बात अभी बाबा कह रहे हैं। मतलब समय के तकाजा के हिसाब से समझ लीजिए, हम देरी से आए तो क्या नुकसान हो जाएगा। फिर पंजाब के जोन के लिए बात, बाबा ने मुरली पूरी की 8:32 को पूरी किया, माना 47 मिनट बाबा ने एग्जैक्ट मुरली चलाई। फिर बाबा ने पंजाब का टर्न की बात कही। अब बाबा ने कहा विशेषता पंजाब की है, कुमारियां टीचर बहुत अच्छी निकली है और बहुत बहादुर है, डरने वाली नहीं है, बहादुर हो ना। और फिर इसलिए बाबा ने कहा इनको आपको क्या कहना पड़ता है, शिव शक्तियां कहना पड़ता है। फिर बाबा ने ओलेना दिया, सभी जोन को ओलेना दे दिया। क्या दिया? बाबा का जो बाबा से जो सर्टिफिकेट लेने का था, अभी तक किसी भी जोन ने बाप से सर्टिफिकेट नहीं लिया है, और अभी पंजाब जोन भी ये लेगा। मतलब कौन सा सर्टिफिकेट? निर्विघ्न अपने जोन को बनाने का। हम आपस में ही लड़ते रहते हैं, जोन के अंदर ये करेंगे वो करेंगे, इस प्रकार से बातें करते रहते, और बाप चाहता है हमारे जोन को निर्विघ्न बनाना, और हम चाहते हैं विघ्नों के आधार पर आगे बढ़ने के लिए। कहाँ से हम आगे बढ़ सकेंगे? बाबा चाहता है, बाबा से ये सर्टिफिकेट लेना है निर्विघ्न बनने का, निर्विघ्न हमारा जोन बने। पहले बाबा कहते थे हमारा सेंटर निर्विघ्न बने, पिछली मुरली में पहली बार कहा है बाबा ने जोन को निर्विघ्न बनाने का, और जोन को निर्विघ्न बना करके कार्य करने का है, वो कार्य करने का। हमारे महाराष्ट्र के अंदर भी हमारी संतोष बहन ने 28-29 तारीख को बाबा की इस मुरली, पिछली मुरली के आधार पर प्रोग्राम बनाया कि हम जोन को कैसे निर्विघ्न बनाए। तो ये बात जो है बाबा की सर्टिफिकेट लेने की, बाबा ने सबको कहा है, मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, सभी जोन को कह रहा हूँ बाबा की ये बात को, कि अपने जोन को निर्विघ्न बनाओ। आपस के सबकी बात, अनेक प्रकार की बातें होती है, उसको भूल करके निर्विघ्न बनाना ये बहुत बड़ी बात है। जो निर्विघ्न बनाना, तो बाबा का जो निर्विघ्न बनाएगा उसका उसको ज्यादा बल मिलेगा, ज्यादा फल मिलेगा। और इसके लिए क्या करने का है, निर्विघ्न बनाने के लिए, जोन को निर्विघ्न बनाने के लिए बाबा ने एक ही युक्ति बता दिया है कल। जैसे स्थूल में एक दो को साथ देते हैं, वैसे ही संस्कारों के मिलन में भी प्रत्यक्ष फल दिखाओ। वो जोन को निर्विघ्न करना हो, सेवा केंद्र को निर्विघ्न करना हो तो क्या करो। बहुत सुंदर बात कही है और ये बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है कि संस्कारों में मिलन कराने की बात। संस्कारों में हर एक अपने संस्कार को पकड़ करके बैठता है और इसके कारण क्या होता है, संस्कारों का मिलन नहीं होता है। संस्कारों का मिलन नहीं होता है इसलिए जोन निर्विघ्न नहीं बनता है, ये हकीकत है। बाबा युक्ति बता रहा है कि संस्कारों का मिलन करो ना, संस्कारों का मिलन करो तो बाकी सब कुछ हो जाएगा। हम सेवा के अंदर सेवा के पीछे पड़े हुए, बाबा कहते सेवा तो अपने आप होती रहेगी, पहले संस्कारों का मिलन करो। हाँ तो क्या होगा, बाप से सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो बाप का सर्टिफिकेट कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है। तो इसलिए हमारी सभी जोन इंचार्ज को, सभी सब जोन इंचार्ज सबको, सभी सेंटर इंचार्ज को भी ये बाप का जो आह्वान जो है, हाँ कि बाप का ये उलेना है उसको पूर्ण करने का है, और इसके लिए संस्कारों का मिलन करने का और उसे प्रत्यक्ष फल दिखाओ। ये प्रत्यक्ष फल है, सत्युग में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो अलग बात है, वो अप्रत्यक्ष फल है। आपस में संस्कार होगा, मिलन का होगा, प्रत्यक्ष मिलन का फल हो जाएगा। कितने सुंदर बात बाबा चाहते हैं, और क्या करें हम बच्चे नहीं कर पाते हैं। फिर डबल पुरुषार्थियों के, डबल विदेशियों के लिए कहा बाबा, उनको डबल पुरुषार्थी भी कहते हैं, उनके लिए दो बातें बहुत सुंदर कही, वो सबके लिए है। जैसे गुजराती में हम कहते हैं, हाँ कहना होता है बहू को, तो नाम लिया जाता है बेटी का, इस प्रकार से बाबा ने डबल पुरुषार्थी, डबल विदेशियों के नाम पर सबको कहा हुआ है। ये डबल विदेशी जो यहाँ आते हैं ना, देखो विदेशियों को ये सर्टिफिकेट दिया है, भारत के बच्चों को अभी तक ये सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ये करोड़ वास्तविकता है। बाबा ने कहा है डबल विदेशी जो है ना मधु आते हैं और क्या करते हैं, मधुबन में आते हैं क्या करते हैं, हर एक अपने पुरुषार्थ में कोई ना कोई बात की एडिशन करते हैं, हर एक अपने पुरुषार्थ में कोई ना बात का एडिशन करते हैं। ये जो डबल डबल विदेशियों ने ये सर्टिफिकेट लिया है ना, इतना आप सब, हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए, इनको बाप से ये भी सर्टिफिकेट लेना होगा कि हमें पुरुषार्थ में या मधुबन में आए हैं तो कोई ना कोई बात का एडिशन करके जाओ। और बाबा ने क्या कहा, जो भी विदेशी यहाँ आते हैं कोई ना कोई बात में अटेंशन देते हैं, आगे से यह बात नहीं करनी है, यह बात करनी है, दोनों बातें, क्या नहीं करना है क्या करना है उसके ऊपर अटेंशन दो। जीवन में यह बात सीख ले क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बाकी सब जीवन आपका श्रेष्ठ बन जाएगा। हम क्या करते हैं, अव्यक्त बाबा की एक उलेना है, बाबा ने कहा है कि मैंने जो कहा है वो बच्चे नहीं करते, और जो नहीं कहा है वो बच्चे करते हैं। अभी तो मुरली है, जो मैंने कहा है वो नहीं करते, और जो नहीं कहा है वो करते हैं। बाबा ने फिर उसमें बताया, मैंने कहा है कि विनाशी की याद भूलो, मैंने क्या कहा है, विनाशी की याद भूलो और अविनाशी की याद कायम रखो। उसके बदले में बच्चे क्या करते हैं, अविनाशी की याद भूल जाते और विनाशी की याद कायम रखते। ये अव्यक्त मुरली का उलहना है, क्या विनाशी की याद बाबा ने कहा है उसकी याद भूलो और अविनाशी की याद कायम रखो। उसके बदले में क्या करते हैं, विनाशी की याद कायम रखते और अविनाशी की याद भूल जाते हैं। ये बाबा का उलहना है, इसलिए बाबा कहते मैं जो कहता हूँ वो बच्चे नहीं करते, जो नहीं कहता हूँ वो करते हैं। तो इसलिए कल की बात भी जो भी है, कि कोई बात क्या करना है क्या नहीं बात करना है, क्या कोई ना बात का प्रोग्रेस करना ही है, और इसलिए मन में नक्की करके जाओ कि यहाँ मधुबन में आने से क्या हाथ भी उठवाया बाबा ने, सबके लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन करके ही जाना है। हम सब यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, ये मन में दृढ़ संकल्प करे, कर सकते हैं। बाबा ने सबके सबको कहा है, खाली डबल फॉरेनर्स को नहीं, सबको कहा है कि मधुबन में आए हैं तो क्या करना है, कुछ ना कुछ परिवर्तन करके ही जाना है। ठीक है, बाबा ने कह करके प्रश्न पूछा है, मंजूर है। मैं भी बाबा की ओर से ये प्रश्न आप सबको पूछ देता हूँ कि सब हम सबके मन में है कि हम यहाँ आए तो कुछ ना कुछ परिवर्तन करके जाना है, और ये बाप की बात मंजूर है? जिसको मंजूर है वो हाथ खड़ा करे। फिर मैं भी बाबा की तरह बोल दूं कि बाबा के बच्चे हाथ खड़ा करके तो सबके दिल को मोह लेते हैं, वह तो करके दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ न कुछ परिवर्तन करके ही जाना है। और फिर बाबा ने उनको कहा है डबल सर्विस करते हैं, हम यहाँ जितने भी बैठे वो भी डबल सर्विस करते हैं, जो थोड़े बहन भाई समर्पित हो गए उनके बाद अलग है, डबल सर्विस करते हैं। डबल सर्विस करते भी बच्चे बहुत अच्छे तीव्र पुरुषार्थी है, और बाबा खुश है, सदा आगे नंबर सदा आगे लेते रहते, चल रहे हैं, आ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, वो नहीं, हर दिन का प्रोग्रेस क्या है, मुरली सुनना, धारण करना, इसका प्रूफ है परिवर्तन करना। बहुत कुछ है, हमारे गुजराती में कवि है अखा भगत, उसने कहा रोज इतना ज्ञान सुनते सुनते हमारा कान भी थक गया, पत्थर हो इतने को इसका पूजा इसकी पूजा किया तो भी क्या कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार से बाबा कहते हैं मुरली सुनना, धारण करना, वो सब करते हो, परंतु उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ है आप में परिवर्तन हुआ, ये प्रूफ बाबा चाहते हैं। क्या प्रूफ चाहते हैं? मुरली सुनते हैं, धारण करते हैं, जो भी करते हैं उसके प्रूफ बाबा चाहते हैं। फिर बाबा कहते हैं फिर भी जो भी बच्चे करते हैं बाप दादा उससे खुश है। फिर बाबा ने विज्ञान की बात कही, 100 साल के अंदर विज्ञान में क्या क्या परिवर्तन हुआ, और बाबा ने यही कहा कि साइंस आपके काम में आ रहा है। फिर बाबा ने बहुत कुछ आगे का कहा हुआ है। तीव्र पुरुषार्थी की डेफिनेशन बाबा ने कल बताई है, हम सब चाहते हैं ना हम तीव्र पुरुषार्थी बने, सबकी चाहना है तीव्र पुरुषार्थी बनने के। तो बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी का निशान क्या है? बाप दादा देखिए सभी को बहुत बहुत तीव्र पुरुषार्थी, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जो सोचा और किया, जो सोचा वह किया उसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी, जो सोचा वह किया उसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। तो जो भी तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, सबको याद प्यार नहीं दिया है कल, ये याद रहे, कल बाबा ने सबको याद प्यार नहीं दिया है, किसको याद प्यार दिया? तीव्र पुरुषार्थी। और तीव्र पुरुषार्थी कौन? जो सोचा वही करके दिखाने वाले, इसको बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। बाबा कहते हैं ऐसे तीव्र पुरुषार्थी, एक एक को बाप दादा तीव्र पुरुषार्थी के लक्ष्य की मुबारक देते हैं, और साथ साथ आगे बढ़ने की बधाई भी दे रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थ के लक्ष्य की मुबारक भी देखते हैं और आगे बढ़ने की वादाया भी देते हैं। ये कब मिलेंगी? ये वादाया कब मिलेंगे? मुबारकबादी कब मिलेंगी? अगर हम तीव्र पुरुषार्थी बने तो। पहली बार बाबा ने ये डिस्टिंक्शन रखा हुआ है तीव्र पुरुषार्थी, बाकी सबको याद प्यार नहीं दिया है तो इसलिए साथ आगे बढ़ने की दे रहे हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने कल अनेक नए प्रकार से याद प्यार दिया, मुबारकबाद दिया तीव्र पुरुषार्थी को, और उसको आगे बढ़ने की बधाई भी दिया। तो क्या कर रहे हैं हम सब? ऐसा लक्ष्य रखे कि हम बाप दादा की ये लक्ष्य तीव्र पुरुषार्थी का लक्ष्य की मुबारकबादी भी आपको हमको मिले और आगे बढ़ने की बधाइयां भी मिले, ये इच्छा रखते हो ना सब तीव्र पुरुषार्थी की लक्ष्य की मुबारकबादी और आगे बढ़ने की बधाई, दोनों बातों को हम बाबा से हमको मिल जाए उसका प्रयत्न करना क्या। फिर बाबा ने याद की दवाई की बात कही है, बीमारी के अंदर पहली दवाई है याद की है, और तो कर रहे हैं करते रहेंगे इस प्रकार से। जब भी हमारे जीवन के अंदर बीमारी आए तो इसके लिए ये याद करना है। फिर बाबा ने लास्ट में जो मुरली पूरी हुई ना, बाद में स्टेज का कार्यक्रम चला, 8:56 से कार्यक्रम स्टेज के ऊपर चला है, और उसके अंदर मोहिनी बहन के बारे में बताया, दादा नारायण के बारे में बताया, जानकी दादी के बारे में बताया, निर्मल शांता दादी के बारे में, वो आप पढ़ लेना। और हमने भी जो बाबा से पूछा था स्टूडियो के बारे में, वो भी आज ये आपको बताऊं, ये स्टूडियो का एक जो आपने सब सोच रहे हैं पीछे में क्या है, ये स्टूडियो के अंदर एक इक्विपमेंट लिया है वर्चुअल, इसके आधार पर आपको लगेगा मैं यहाँ बोल रहा हूँ इसके बारे में, इसको एडिटिंग करके अब जब पीस ऑफ माइंड चैनल पर जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि आपको लगेगा रमेश भाई यहाँ बोल रहा है। वो स्टूडियो के अंदर इसके इस प्रकार के इफेक्टिव ला सकते हैं कि जैसे मैं हिमालय की टोच पर बैठ करके बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ, शहर के बीच में पॉपुलेशन के बीच में आबादी के बीच में बोल रहा हूँ, इस प्रकार का अलग अलग प्रकार का जैसे टीवी में दिखाते हैं ना इस प्रकार का हम दिखा सकते हैं। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट जो है दिखाया हुआ है, जिनको एक्सपेरिमेंट देखना हो डिटेल में या तो स्टूडियो में 1 घंटे के बाद शाम को जाकर के देखे, या तो पीस ऑफ माइंड चैनल में भी देख लेंगे तो उसको मालूम पड़ेगा। ये एक प्रयोग है स्टूडियो के द्वारा, बाबा ने नए नए ईश्वरीय सेवा के जो साधन दिए हुए इसके अंदर ये वर्चुअल रियलिटी का ये शो है जो टीवी आदि के अंदर आप देखते हैं, इस प्रकार का ये होता है। तो बाबा ने लास्ट में जो कहा हुआ है बहुत अच्छी सुंदर बात कही है, दादियों को लिए क्या सबको कहा हुआ है, दुआ से ही भी चलती है और चलाते हैं, विशेष दुआओं के प्रति निमित्त बनी हुई है, चाहे भाई हो चाहे निमित्त बने हुए हो, कोई भी कार्य के लिए निमित्त बने हुए हो, उसको बाप के तरफ से स्पेशल दुआएं मिलती है। तो क्यों नहीं हम सब ऐसा प्रयत्न करें कि हम भी हमको भी बाप से स्पेशल दुआओं का दुआएं मिलती रहे और मिलती रहेंगी। ऐसा कह करके बाबा ने समाप्त किया और उसके बाद बाबा ने विदाई लिया। 9:30 बजे गए बाबा, अभी हम बच्चों की विदाई लेकर के गए, मैंने बताया ना आपको 7:35 को बाबा आए और 9:30 बजे गए, मतलब करीब 2 घंटे के अंदर बाबा ने काम पूरा किया। इस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट का बाबा ने कल हम बच्चों को सिखाया, और कल जो बाप और दादा के बीच का जो भेद जो है व्यवहार में उनकी आशाओं में इच्छाओं में और पुरुषार्थ में क्या क्या फर्क है, बाप की इच्छा क्या है और अलौकिक बाप की इच्छा क्या है, परमात्मा बाप की इच्छा क्या है, उसके बारे में जो गहराई में बताया हुआ है उसकी गहराई तक जाकर के इन दोनों के पार्ट को समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। इसलिए कल बाप और दादा के पार्ट को समझने की सारी मुरली के अंदर यही राज है। और लास्ट में जो बाबा ने कहा समय को नजदीक लाना है, समय को प्रत्यक्ष करना है, ये सब बातों को हम धारण करें तो क्या हो जाएगा, हमारा आना यहाँ आना सफल हो जाएगा और बाप का भी आना हम बच्चों के साथ व्यवहार करना इसका वो सफल हो जाएगा। तो ये है कल का मुरली का सार कहो, उसका गहराई में जाकर के उसके ऊपर जो चिंतन जो है, आप सबका भी चिंतन चला होगा, हमने भी हमारा जो चिंतन चला वो आपके सामने रखा है। ओम शांति।